और सुनाए, आज सब आप कैसे हैं? आप सब ठीक हो? खुश हो? किस लिए खुश हैं? क्योंकि आपका यहोवा यरी खुदा आपको सब कुछ मुहैया करता है। हालेलुया! आवाज नहीं आई। हालेलुया! ये बात हुई। आए हम सब इससे पहले कि खुदा के कलाम में से सीखना शुरू करें, मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो और खुदावंद का शुक्र हो आपके सारे खूबसूरत चेहरों के लिए, खूबसूरत हंसी के लिए जो आपके चेहरों पर है। और मेरी दुआ है कि आज हम जो कुछ भी कलाम खुदा में से सीखें, हम सबकी समझों को, दिलों को, अकलों को रोशन कर दे। सो आए हम सब खुदा के हजूर झुकें, उसी यहोवा खुदा के हजूर झुकें जो हमें मुहैया करता है, जो हमें कुव्वत देता है, जो हमें ताकत देता है। और उस यहोवा का नाम का मतलब है देने वाला, मुहैया करने वाला। और उसने कहा है कि जो कोई मुझसे मांगेगा मैं उसे दूंगा। सो आए हम उससे हिकमत और दनाई मांगे और अपने दिल को उसके हजूर खाली कर दें, हर तरह की फिक्र, परेशानी, सोच, हर एक चीज को उसके सपोर्ट कर देंगे। सो चंद लम्हों के लिए खुदा के हजूर झुकेंगे। खुदा बाप, तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ, तेरे नाम की हमद और सताइश हो तेरे बेटों और बेटियों के लिए, बच्चों के लिए जो इस सुबह तेरे हजूर इकट्ठे हैं। इस खूबसूरत वक्त के लिए, दिन के लिए हम तेरा शुक्र करते हैं। खूबसूरत प्रस्तुति के लिए तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद। कंप्यूटर के लिए, सारी टेक्नोलॉजी के लिए तेरा शुक्र करते हैं। और तेरे कलाम के लिए तेरा शुक्र करते हैं जिसमें तूने हमें हुक्म दिया है कि अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत, अपनी सारी अकल, अपने सारे दिल से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रखें। तो खुदा पाक रू, आज हम सब की रहनुमाई कर, जो कुछ भी सीखें हमको कसरत से बरकत मिले और ये कलाम की बरकत दूसरों तक पहुंचाने वाले बने। यीशु मसीह के नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन। जो भाई और बहन बाइबल मुकद्दस पढ़ सकते हैं मेरे साथ निकालें, इफिसियों के नाम पालूस रसूल का खत, उसका पहला बाप, उसकी 18वीं आयत को पढ़ेंगे। और यहां पर हम सीख रहे हैं पालूस रसूल की दुआ, पालूस रसूल की ख्वाहिश, पालूस रसूल की दरख्वास्त और मिन्नत क्या है खुदा के हजूर ईमानदारों के लिए। पालूस क्यों खुदा के हजूर इस बात को चाहता है कि ईमानदार समझ जाएं? कौन सा सबब है, वो कौन सी बात, वो कौन सा राज है जिसके बारे में पालूस रसूल अपने दिल को अंढेलता है, खाली करता है? तो आज हम 18वीं आयत को सीखेंगे। इससे पहले कि 18वीं आयत को सीखना शुरू करें, आपको बताना चाहता हूं, पहला बाप, उसकी पहली 14 आयात, ये एक लंबा जुमला है जो हमें यूनानी जबान में पता चलता है। ये पालूस रसूल का एक लंबा जुमला है जो उसने बातें की हैं कि क्या कुछ हमें खुदा में हासिल है। और फिर दूसरा जुमला जो शुरू होता है इस बाप में, वो 15वीं आयत से लेकर 23वीं आयत तक है। इसलिए बच्चों, आज के दिन में आपके पास सारा दिन है खेलने के लिए, गुफ्तगू करने के लिए और दूसरी बातें करने के लिए। इसलिए आज इस वक्त मेरी यही दरख्वास्त है कि गौर से सुने, गौर से सुने। वैसे ही जब आप टीवी के सामने बैठते हैं तो आपका मुंह बंद हो जाता है, पूरी तवज्जो टीवी पर होती है, वैसे ही मैं चाहता हूं कि पूरी तवज्जो खुदा के कलाम को सुनने की तरफ हो। तो पालूस कहता है 15वीं आयत से हम शुरू करेंगे, इसी सबब से मैं भी उस ईमान का जो तुम्हारे दरमियान खुदावंद यसु पर है और सब मकसों पर जाहिर है, हाल सुनकर तुम्हारी बाबत शुक्र करने से बाज नहीं आता और अपनी दुआओं में तुम्हें याद करता हूं। पालूस रसूल यहाँ पर बताता है ईमानदारों को जेल में बैठे हुए जब वो इस खत को लिखता है, कैद खाना में है, सिपाही उसके इर्द गिर्द है, और तारीख के मुताबिक जब हम देखते हैं तो पालूस रसूल के साथ हर 4 से 5 घंटे बाद एक नया सिपाही बांधा जाता था, उसको उसके साथ हथकड़ी लगाई जाती थी और पालूस के साथ वो दिन रात रहते थे। और यहाँ पर पालूस कैद खाना में बैठा इस खत को लिखते हुए कहता है उन ईमानदारों को जो इफ्सस में, कहता है कि तुम्हारे सबब से, तुम्हारे हाल को, जो तुम्हारा ईमान है, तुम्हारी जिंदगी को, और उसमें यीशु मसीह के उस ईमान और मोहब्बत और प्यार को देखकर कहता है मैं तुम्हारी बाबत खुदा का शुक्र करता हूँ, तुम्हारे लिए शुक्रगुजारी करता हूँ, अपने दिल को खुदा के हजूर पेश करता हूँ तुम्हारे लिए और अपनी दुआओं में तुम्हें याद करता हूँ। इस आयात में 15 और 16 आयत में हमारे लिए जो बात सीखने की ये है, हमें भी एक दूसरे के लिए खुदा के हजूर दुआ शुक्रगुजारी करते रहने की ज़रूरत है। हमें पालूस जैसी अकल, पालूस जैसा रवैया अपनाने की ज़रूरत है। इसलिए एक दूसरे की रूहानी तरक्की के लिए हमें दुआ करने की ज़रूरत है। और फिर 17वीं आयत में कहता है कि हमारे खुदावंद यीशु मसीह का खुदा जो जलाल का बाप है तुम्हें अपनी पहचान में हिकमत और मकाशफा की रूह बख्शे। पालूस रसूल की दुआ ये है कि खुदा ईमानदारों को हिकमत, दनाई, कुव्वत, समझ और फहम दे ताकि वो समझ सके उस रूहुल कुद्दस के वसीला से उन तमाम बातों को, उन बरकतों को, उन नेमतों को कि वो कौन कौन सी हैं। और ये बातें हमने सीखी और पालूस यहाँ पर दुआ कर रहा है उन तमाम बातों के लिए जो पहली 14 आयात में उसने कही है कि तुम्हें जो कुछ यीशु मसीह में हासिल है मैं चाहता हूँ तुम उसे समझकर उसमें जिंदगी गुजारो। वो चाहता है कि हम अपनी पहचान, अपनी हालत, अपना मकाम जानें। मिसाल के तौर पर जब कोई स्टेज ड्रामा की दुनिया को चुनता है तो वो अपनी जिंदगी उस स्टेज ड्रामा को बना लेता है और वो वहाँ क्या करता है, अपनी जिंदगी को वहाँ गुजारना शुरू कर देता है, उस तरीका कार से उसका बोलना, उठना, बैठना, चालना हो जाता है। इसी तरह पालूस चाहता है कि हम अपनी पहचान, अपनी शिनाख्त पाकर उसमें उठना, बैठना, बोलना, चालना शुरू कर दें कि हम मसीह में क्या कुछ हासिल रखते हैं। सो आज हम 18वीं आयत को शुरू करेंगे और ये पालूस की दुआ का हिस्सा है। 18वीं आयत में कहता है और तुम्हारे दिल की आंखें रोशन हो जाएं, मेरे साथ कहें सब, और तुम्हारे दिल की आंखें रोशन हो जाएं ताकि तुमको मालूम हो उसके बुलाने से कैसी कुछ उम्मीद है और उसके मेराज और उसकी मेराज के जलाल की दौलत मकसों में कैसी कुछ है। ये आयत, ये हिस्सा, ये कलाम का हिस्सा बहुत गहरा है, लेकिन आज हम सिर्फ सीखेंगे इस हिस्सा को और तुम्हारे दिल की आंखें रोशन हो जाएं। मेरे साथ फिर कहें और तुम्हारे दिल की आंखें रोशन हो जाएं। सब कहें और तुम्हारे दिल की आंखें रोशन हो जाएं। पीछे बहनों की आवाज नहीं आई, और तुम्हारे दिल की आंखें रोशन हो जाएं, और तुम्हारे दिल की आंखें रोशन हो जाएं। पालूस रसूल का यहाँ पर कहने का क्या मतलब है? पालूस रसूल किस किस्म की दुआ यहाँ पर कर रहा है? अगर हम सोचना शुरू करें, पालूस क्यों कह रहा है कि दिल की आंखें रोशन हो जाएं? क्या दिल की आंखें होती हैं? नहीं, दिल की आंखें नहीं होती। पालूस ने क्यों ये बात, ये लफ्ज इस्तेमाल किया कि तुम्हारे दिल की आंखें रोशन हो जाएं? बाइबल मुकद्दस में जब हम लफ्ज दिल का देखते हैं तो इसके पीछे हमें बहुत से हवाला जात मिलते हैं जो हमें मुख्तलिफ मतलब या उनके मायने बताते हैं। बहुत दफ़ा बाइबल मुकद्दस में दिल का जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वो इंसान के दिल के लिए इस्तेमाल हुआ है, जिसे हम कहते हैं कि जिस्मानी हिस्सा है, जो जो दिल हमारे अंदर धड़कता है, जो गोश का लोथड़ा है, जो खुदा ने तैयार किया है, जिससे हम महसूस करते हैं जब अपने सीने पर अपने हाथ को रखते हैं, या डॉक्टर जब बीमारी चेक करने के लिए अपने उस थर्मामीटर को लगाता है तो दिल धड़कता है। बहुत दफा उस गोश्त के टुकड़े को बाइबल मुकद्दस लफ्ज दिल के लिए इस्तेमाल करती है, और फिर बहुत दफा लफ्ज दिल का बनीनु इंसान के दिमाग, सोच, रवैया और ख्यालात के बारे में बात करता है। और इसीलिए पालूस रसूल यहाँ पर कहता है, और तुम्हारे, यानी कि वो जमा में बात कर रहा है, एक इंसान के नहीं बल्कि तमाम ईमानदारों के लिए वो दुआ कर रहा है कि तुम्हारे दिल की आंखें रोशन, यानी कि तुम्हारे समझ, तुम्हारे ख्याल, तुम्हारे दिमाग की आंखें रोशन हो जाएं, यानी कि तुमको सच्चाई मालूम हो जाए। क्यों क्यों पालूस रसूल ये दुआ करता है? क्यों पालूस रसूल को ये ज़रूरत पड़ी कि हमारे दिल की आंखें रोशन हो जाएं? उसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपकी समझ, आपका फहम या अकल या जहन, या जिसे कह सकते हैं दिमाग, के ख्यालात रोशन हो जाएं। इसके लिए बाइबल मुकद्दस में से हम हवाला जात देखेंगे कि क्यों ये लफ्ज़ दिल का यहाँ पर इस्तेमाल किया, क्यों हर रोज आप यहाँ पर आते हैं ताकि आप अपने दिल की हिफाजत और निगेबानी करें। यहाँ पर जो लफ्ज़ दिल का इस्तेमाल हुआ है, ये दिमाग के लिए इस्तेमाल हुआ है, अकल के लिए इस्तेमाल हुआ है, और पालूस यही चाहता है। यही पालूस रसूल की दुआ है कि रूहुल कुद्दस के वसीला से हम अकल हासिल करें, हम समझ हासिल करें, हमें मालूम हो जाए कि हमें क्या कुछ हासिल है। इसलिए मेरे साथ चंद एक हवाला जात देखें। आप सोच रहे होंगे कि भाई फैसल पादरी साहब को आज क्या हो गया कि वो दिल को कह रहे हैं कि ये अकल की बात है, ये ख्यालात की बात है। बाइबल मुकद्दस में दिल का लफ्ज इंसानी दिल के लिए, जो गोश्त का टुकड़ा है उसके लिए, और फिर उसके बाद सोच के लिए इस्तेमाल हुआ है, दिमाग के लिए इस्तेमाल हुआ है। इसलिए मेरी तरफ ध्यान रखें, बच्चों की तरफ मत गौर करें, मेरी तरफ ध्यान करें, गौर से सुने, क्योंकि बाइबल मुकद्दस हमें कहती है अपने दिल की फिक्र कर, अपने दिल की देखभाल कर। बहुत दफा डॉक्टर जब किसी को दिल की बीमारी पड़ जाती है, लग जाती है, तो उसके दिल का इलाज करते हैं, और बहुत दफा बाइबल कहती है अपने दिल की फिक्र कर, अपने दिल की देखभाल कर। क्यों? मेरे साथ निकालें यर्मिया नबी का सहीफा, उसका 17 बाप, उसकी 9 आयत। वहां पर खुदावंत का बंदा यर्मिया क्या कहता है? 17 बाप, उसकी 9 आयत में कहता है, दिल सब चीजों से ज्यादा हीलेबाज और लाइलाज है, उसको कौन दरियाफ्त कर सकता है? यहां पर वो दिल की हालत बयान करता है कि दिल क्या है, सब चीजों से ज्यादा हीलेबाज, यानी कि ड्रामेबाज, या कह सकते हैं बहानेबाज, और लाइलाज है, उसको कौन दरियाफ्त कर सकता है? लेकिन खुदा कहता है, मैं खुदावंद दिल व दिमाग तो जांचता और आजमाता हूं, ताकि हर एक आदमी को उसके चाल चलन के मुआफिक और उसके कामों के फलों के मुआफिक बदला दूं। हमें क्यों हर रोज अपने दिल की फिक्र करने की जरूरत है? क्योंकि दिल ऐसा मकाम, यानी कि हमारा दिमाग, हमारी अकल, हमारा जहन ऐसा मकाम है जहां पर हम अक्सर गुनाह करते हैं। अकल वो जगह है जहां पर बहुत ज्यादा गुनाह ईमानदार करते हैं। आपको याद होगा कि बागे अदम में क्या हुआ था। शैतान ने हवा से कहा कि तेरी आंखें खुल जाएगी, तुझे अकल हासिल हो जाएगी, तू बहुत ज्यादा जहीन हो जाएगी। और शैतान ने क्या किया, उसके दिमाग को, उसकी अकल को बहकाया। इसीलिए कहा जाता है कि जो कुछ हम सोचते हैं, कहते हैं कि जो कुछ हम देखते हैं वो हम सोचते हैं, और जो कुछ हम सोचते हैं वो हमारे मुंह से निकलता है। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, मेरे साथ निकाले मत्ती की इंजील, मत्ती की अंजील उसका 5 बाप उसकी उसकी 27वीं आयत में यीशु मसीह कह रहा है यहाँ पर अपने शागिर्दों से बात करते हुए, उस तमाम लोगों के पंडाल से बात करते हुए उनको सिखा रहा है। और यीशु मसीह कह रहा है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि जना ना करना। पुराने अहदनामा में जब कोई जना या झूठ या बदकारी में पकड़ा जाता था तो उसकी सजा थी, और यीशु मसीह कह रहा है कि वो जिस्मानी थी और उसमें लोग शामिल होते थे, बदी बदकारी गुनाह में। और यीशु मसीह ने कहा कि तुम सुन चुके हो कि मैंने कहा है, कलाम में लिखा है कि जना ना करना। लेकिन 28वीं आयत में क्या लिखा है, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूं, जिस किसी ने बुरी ख्वाहिश से किसी औरत पर निगाह की वो अपने दिल में उसके साथ जना कर चुका। तो सोच कहाँ पर शुरू होती है, हमारे दिमाग में। इसलिए बाइबल मुकद्दस में क्या कहा गया है, यहाँ पर इस हवाला में इफिसियों 1 बाप उसकी 18वीं आयत में अकल के बारे में बात हो रही है, दिमाग के बारे में बात हो रही है। इसलिए हमें अपने दिमाग की बहुत ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत है। जिस तरह हर रोज़ हम अपने बदन की फिक्र करते हैं, नाते धोते हैं, अपने दांत साफ करते हैं, कंघी करते हैं, नाखून काटते हैं, नेल पॉलिश लगाते हैं, पाँव में अच्छी जूती पहनते हैं, किस लिए, क्योंकि उसकी फिक्र है। जूती इसलिए पहनते हैं ताकि हमारे कांच या कांटा ना लग जाए। नहाते धोते इसलिए हैं ताकि लोगों के सामने लोग हम पर उंगली ना उठाएं, कहें कि आप बहुत गंदे हो। दांत इसलिए साफ करते हैं ताकि कोई ये ना कहे कि मुंह से बदबू आती है। इसीलिए हमें अपने दिमाग की, अपनी अकल की, अपने सोचने के तरीकाकार को बहुत ज़्यादा क्या है, गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है कि हम किस तरह सोचते हैं। इसलिए क्योंकि जब हम सोचना शुरू करते हैं और जब बुरी सोचें, बुरी ख्वाहिशें हमारे दिल यानी कि दिमाग में शुरू होती हैं, तो यीशु मसीह जा कहता है कि वो गुनाह जिस पर तुम अपनी अकल धड़ाना शुरू करते हो, अपने जहन में उसे सोचना शुरू करते हो, वो तुम गुनाह करते हो। इसलिए मेरे साथ एक और हवाला निकालें, मत्ती की इंजील उसका 15वां बाप। क्यों ये हवाला जात आपको देने की जरूरत है, ताकि आप दलील पेश कर सकें किसी ना किसी बहन भाई को जब आप ये कलाम का हिस्सा बयान करें। क्योंकि बहुत दफ़ा बाइबल में दिल का लफ्ज़ दिल के टुकड़े के लिए, जो कहते हैं कि जिस्म का हिस्सा, उसके लिए, और बहुत दफ़ा हमारे दिमाग के लिए इस्तेमाल हुआ है। इसलिए मत्ती की अंजील उसका 15वां बाप उसकी हम 15वीं आयत से पढ़ेंगे। यहाँ पर यीशु मसीह बात कर रहा है फरीसियों के साथ और फकीयों के दरमियान जो बातचीत चल रही है। जब उन्होंने यीशु मसीह के शिगिर्दों को देखा कि वो हाथ धोए बगैर खाते हैं, तो वो यीशु मसीह के शिगिर्दों को क्या कहने लगे, बुरा भला कहने लगे। और शिगिर्द यीशु मसीह के पास आए तो यीशु मसीह ने उनको बताया कि कौन सी चीज़ है जो इंसान को नापाक करती है, कौन सी चीज़ है जो इंसान को बुरा ठहराती है? क्या खाना पीना या हाथ धोए बगैर खाने से इंसान नापाक होता है, या फिर कोई और वजह है? तो इसीलिए 15वीं आयत में जब शिगिर्दों को समझ नहीं आई, तो 15वीं आयत में खुदावंद का बंदा पतरस पूछता है। पतरस ने जवाब में उससे कहा, ये तमसील हमें समझा दे। गौर से सुने 16वीं आयत। उसने कहा, यानी कि यीशु मसीह ने, क्या तुम अब तक बेसमझ हो? यानी कि तुम्हें अभी तक समझ नहीं आई, तुम्हें अभी तक इस बात की पहचान या अकल या फहम हासिल नहीं हुआ? क्या नहीं समझते कि जो कुछ मुंह में जाता है वो पेट में पड़ता है और मजबला में फेंका जाता है? सादा सी बात है, जब हम रोटी खाते हैं वो हमारे पेट में जाती है, और जब हजम हो जाती है तो हम सब, ये खुदा का निजाम है, बाथरूम में जाते हैं और उसे मजबला कहा जाता है, यानी कि वो गंद में फेंका जाता है जो कुछ हम हजम करते हैं। और फिर 18वीं आयत में क्या लिखा है, मगर जो बात मुंह से निकलती है वो दिल से निकलती है। मगर जो बात मुंह से निकलती है वो दिल से निकलती है, और वो ही आदमी को नापाक करती है। आदमी को क्या नापाक करती है? ये नहीं कि हमने खीर खा ली हाथ धोए बगैर तो हम नापाक हो गए, हमने आंडा छीन लिया या आंडा खा लिया हाथ धोए बगैर तो हम नापाक हो गए, नहीं। बेशक हाथ हम धोते हैं इसलिए ताकि हम सेहतमंद रहें, जरासीम ना लगे, लेकिन यहाँ पर जो बात हो रही है वो रूहानी हो रही है। यीशु मसीह ने कहा, जो बातें मुंह से निकलती हैं जो बातें मुंह से निकलती हैं वो दिल से निकलती हैं, और वो ही आदमी को नापाक करती हैं। 19वीं आयत। दिल से कौन सी बातें निकलती हैं, यानी कि दिमाग से कौन सी बातें निकलती हैं? गौर से सुने 19वीं आयत। क्योंकि बुरे ख्यालात कहाँ से शुरू होते हैं? दिमाग में। कहां पर? दिमाग में, हमारे दिमाग में। और ये दिमाग वो जगह है जहां पर हम अक्सर गुनाह करते हैं, और यही वो जगह है जहां पर अबलीस क्या करता है, वार करता है। अबलीस क्या चाहता है? हमारी अकल को अंधा करना। अबलीस क्या चाहता है? हमारे सोचने के तरीकाकार को गुमराह करना। अबलीस नहीं चाहता कि हम मसीह जैसी अकल हासिल करें। अबलीस नहीं चाहता कि हम मसीह जैसा सोचना शुरू करें। मसीह नहीं चाहता, अबलीस नहीं चाहता कि हम, हमारी अकल रोशन हो, हमारे ख्यालात बदलें। इसलिए कहता है, क्योंकि बुरे ख्यालात खून रेजियां, यानी कि खून रेजियां, जनाकारियां, हर तरह के बुरे ख्यालात, हरामकारियां, चोरियां, झूठी गवाहियां, बदगोइयां दिल ही से निकलती हैं। ये सब गुनाह कहां पर शुरू होते हैं? हमारे दिमाग में। इसलिए बाइबल मुकद्दस हमें कहती है कि वैसा ही मिजाज रखो, यानी कि वैसा ही नजरिया, वैसा ही सोचना, वैसी ही अकल रखो जैसी मसीह खुदावंद की भी है। फिलिपियों 2:5 में लिखा है कि वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह खुदावंद का भी है। इसलिए क्योंकि इंसान का जो दिमाग है ये ऐसा मकाम है जहां पर अबलीस का काम है वार करना। अगर हमारी रूह खुदा के कलाम से, अगर हमारा दिमाग खुदा के कलाम से खाली होगा, तो अबलीस आसानी से हमें अंधा करेगा, गुमराह करेगा, हमसे झूठ बोलेगा, और बहुत दफा हम उसके झूठों के बायस खुदा से दूर होकर तारीकी के रास्तों की तरफ चल पड़ेंगे। इसीलिए पालूस रसूल की ये दुआ है कि तुम्हारे दिल की आंखें रोशन हो जाएं, यानी कि तुम्हें समझ आ जाए, तुम्हें रोशन ख्याली हासिल हो, तुम समझ जाओ। बच्चों आराम से बैठ जाओ, क्या मसला आपको? इसलिए ये रूहानी जंग सोचों की रूहानी जंग या लड़ाई मैदाने जंग में नहीं लड़ी जाती। बेशक जिस्मानी जंग या लड़ाई गलियों में, बाजारों में, सड़कों में लड़ी जाती है, लेकिन ये रूहानी जंग मैदाने जंग में नहीं लड़ी जाती, बल्कि ये जंग हमारे दिमाग में, हमारे जहन में शुरू होती है। और यही वो जंग थी जिसमें हवा और आदम नाकाम हुए, और उन्होंने अबलीस के उस झूठ का मुकाबला करने की बजाय उसे कबूल कर लिया और खुदा की नाफरमानी की। और इसी झूठ के बायस जब हम खुदा के कलाम से अपनी सोच को हटा लेते हैं, खुदा के कलाम से अपनी निगाह को फेरते हैं, अपने अपने फहम या अपने तकब्बर या अपनी सोच पर यकीन करते हैं, तो हम नाकाम होते हैं। क्यों? मेरे साथ एक मिसाल देखें कि अबलीस का काम है हमारी सोचों को गुमराह करना, हमारी सोचों को खुदा के कलाम से हटाना। और जब खुदा के कलाम से हटाया जाता है, हमारी सोच हट जाती है, तो फिर हम नाफरमानी करते हैं, फिर हम खुद गर्ज होते हैं, यानी कि अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारते हैं। जब हम अपनी सोच से चलते हैं, तो फिर हम अपने पड़ोसी से नफरत करते हैं, यानी कि अपने गवांडी से नफरत करते हैं। जब हम अपनी पुरानी इंसानियत के सोच के मुताबिक, अबलीस के झूठों के मुताबिक चलते हैं, तो फिर हम एक दूसरे को माफ नहीं करते, क्योंकि ये दुनिया की सोच है। अबलीस की सोच है झूठ बोलना, फिर हम झूठ बोलते हैं। अबलीस की सोच है नफरत करना, हम उसी की तरह नफरत करते हैं। अबलीस का काम है खुदा की नाफरमानी करना, हम भी वैसा ही सोचना शुरू कर देते हैं। इसलिए हमें एक दूसरे से मोहब्बत करने की ज़रूरत है। इसलिए हमें हर रोज़ खुदा के कलाम को, बाइबल मुकद्दस को कहा गया है मसीह की अकल, मसीह की अकल को अपने दिमाग, अपने अकल, अपने भेजे में उतारने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जंग रूहानी जंग है। और ये जंग लड़ा बाजारों, गलियों, मैदानों में नहीं लड़ी जाती, ये जंग हमारे दिमाग में शुरू होती है और यहाँ पर लड़ी जाती है। और इसीलिए आप सब बाइबल मुकद्दस के मुताबिक रूहानी जंगजू हैं, रूहानी सिपाही हैं, रूहानी लोग हैं, आसमानी लोग हैं। इसलिए हमें आसमानी लोगों की तरह सोचने की ज़रूरत है, इसलिए हमें हर रोज़ रूहानी लोगों की तरह सोचने की ज़रूरत है। तो मेरे साथ देखें, जब हम अबलीस को और उसके झूठों को कबूल करते हैं अपने दिल में, यानी कि अपने दिमाग में जगह देते हैं, तो क्या होता है? इमाल की किताब उसका 5 बाब, उसकी पहली 4 आयात, 5 आयात में ये कहानी मिलती है, और आप इस कहानी से वाकिफ होंगे। हनन्या और सफीरा की कहानी। इमाल की किताब उसका 5 बाब, भाई अरसलान, इमाल की किताब 5 बाब, उसकी पहली आयत से 5वीं आयत, 6ठी आयत में ये कहानी हमें मिलती है। और यहाँ पर हमें जिक्र मिलता है हनन्या नाम शख्स और सफीरा, जो उसकी बीवी है। और यहाँ पर जो बात चल रही है वो क्या हुई है, इसी बाब के पिछले हिस्सा में, यानी कि 4थे बाब के आखिर में हमें पता चलता है कि लोगों ने, शागिर्दों ने अपना जायदाद, अपना घर बेच, सब कुछ बेचकर खुदा के शागिर्दों के सामने रख दिया कि वो खिदमत के लिए इस्तेमाल करें, यानी कि हदिया, शुक्रगुजारी दी। और हनन्याह और सफीरा ने देखा और उन्होंने कहा कि हम भी ऐसा ही करेंगे। और उन्होंने क्या किया, दिखावे के तौर पर अपने जहन में ये ठान ली, अपने अकल में ये बात बना ली कि हम अपना सारा कुछ बेचेंगे। उन्होंने लोगों के सामने ये बातचीत की और लोगों के सामने उन्होंने अपने आप को बड़ा बनाया, लेकिन जब वक्त आया तो क्या हुआ? तो हनन्या और सफीरा ने क्या की, अपनी जायदाद बेची। और हनन्या की बीवी सफीरा ने, और हनन्या ने क्या किया, कुछ हिस्सा लाकर, मिसाल के तौर पर अगर उनकी जमीन मिसाल के तौर पर 10,000 की बिकी, तो उन्होंने क्या किया, 1,000 ला कर शागिर्दों को दे दिया और 9,000 अपने लिए, अपने बुढ़ापे, अपनी जिंदगी, अपने गुजर बसर के लिए रख लिया। और फिर क्या हुआ, 3री आयत में देखें, खुदावंत का बंदा पतरस उसे कहता है, पतरस ने कहा, मगर पतरस ने कहा, ऐ हननिया, क्यों शैतान ने तेरे दिल में ये बात डाली? दिल यानी कि तेरे दिमाग में, तेरी अकल में, तेरी सोच में, तेरे भेजे में क्यों शैतान ने ये बात डाली कि तू रूहुल कुद्दस से झूठ बोले और जमीन की कीमत से कुछ रख छोड़े? चौथी आयत, क्या जब वो तेरे पास थी तेरी ना थी? सादा सी वो बात उसे पूछता है कि जमीन तेरी थी, तूने क्यों रूहुल कुद्दस से झूठ बोला? जो कुछ तूने ठहराया अपने जहन में, अपने दिल में, उसको क्यों तूने बदला? और जब बेची गई तो तेरे इख्तियार में ना रही। फिर इस बात को गौर से सुने, तूने क्यों अपने दिल में इस बात का ख्याल बांधा? तू आदमियों से नहीं बल्कि खुदा से झूठ बोला। सो दिमाग है जिसकी हमें अपनी अकल, अपने जहन की हमें बहुत देखभाल करने की जरूरत है। जैसे बहनें बहनों को फिक्र होती है अपने कपड़ों की, मेकअप की, हमें इसी तरह अपने जहन की फिक्र करने की जरूरत है। नौजवानों को बहुत दफा मुझे अच्छे बाल कटवाने की जरूरत है, बूट पैंट कपड़े और बहुत ज्यादा नए नए फैशन की शर्टें पहनने की जरूरत है ताकि मुझे लोग देखें। इसी तरह हमें अपने दिमाग की फिक्र करने की जरूरत है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि जो कुछ इंसान के अंदर जाता है वो ही बाहर निकलता है। अगर हम अपने दिमाग में झूठ, परेशानियां, फिक्रें, लालच, बुरी बातें, बुरे ख्यालात डालेंगे तो वही बातें वाकया होगी। अगर हम अपने दिमाग में खुदा का कलाम भरेंगे, खुदा के कलाम को जगह देंगे, तो फिर क्या होगा? हम खुदा जैसा सोचना शुरू करेंगे। नतीजा क्या निकलेगा? हम एक दूसरे को माफ करेंगे जब कोई गलती करेगा। हम एक दूसरे से मोहब्बत करेंगे जैसी मोहब्बत मसीह ने की है। हम एक दूसरे की बहन बेटी को अपनी बहन बेटी जानेंगे। हम एक दूसरे के साथ इज्जत से पेश आएंगे। हम एक दूसरे के लिए दुआ करेंगे, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में यीशु मसीह की अकल या यीशु मसीह के जहन का मतलब यही है, यीशु मसीह जैसा रवैया या सोचना या यीशु मसीह जैसी अकल रखने का, पालूस का कहने का मतलब यही है कि मसीह जैसा दिल हासिल करो। और ये पालूस रसूल की दुआ है, और ये मेरी भी दुआ है आपके लिए कि आपकी अकलें रोशन हो जाएं, कि उन भेदों को जो हम जानने को हैं, उन बरकात को जो आपको हासिल है, उन नेमतों को जो आपके नाम लिखी हुई हैं, उस कुदरत को जो आपके खाता में है, और खुदा की उस अलाही कुदरत को, जोर को, कुवत को जो आप में रहती है, उसे आप जान सकें, ताकि इस मुल्क पाकिस्तान में अपनी कलीसिया के लिए नहीं, घरानों के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे मुल्क में आप नूर की मादर चमकें, और आपके नेक काम देखकर, आपकी जिंदगी देखकर, आपकी जिंदगी में खुदा की कुदरत को देखकर, आपके चेहरे पर चमकते हुए नूर को देखकर लोग कहें कि ये यीशु मसीह के शागिर्द हैं, ये यीशु मसीह के लोग हैं। इसलिए बाइबल मुकद्दस में से हम बहुत कुछ सीखेंगे इसी छोटे से आयत के हिस्सा में से। मेरे साथ इस आयत को सब कहें, इस हिस्सा को कहेंगे, और तुम्हारे दिल की आंखें रोशन हो जाएं, और तुम्हारे दिल की आंखें रोशन हो जाएं, और इसे इस तरह कहें, और तुम्हारे समझ की आंखें रोशन हो जाएं। और तुम्हारी समझ की आंखें रोशन हो जाएं। क्यों? ताकि तुमको मालूम हो कि मसीह यीशु में क्या कुछ हमें हासिल है। इसलिए मेरी दुआ है, आज हमने सिर्फ इस लफ्ज दिल को देखा है, हम और ज्यादा देखेंगे, बहुत ज्यादा इसके पीछे बातें सीखने वाली हैं। इसलिए हमें अपने दिल की यानी के अपने दिमाग की देखभाल करने की ज़रूरत है। हर रोज़ उसकी फिक्र करने की ज़रूरत है। जैसे हमने मत्ती की इंजील में इस हवाला को आगे चलकर देखेंगे, मत्ती 6 बाप उसकी 21वीं आयत, जहाँ तेरा माल है वहाँ तेरा दिल भी लगा रहेगा। अगर हमारी सोच, हमारा दिमाग दुनियावी बातों में, हरामकारियों में, बुत प्रस्ती में, जादूगरी में, झूठ, बगावत, हसद, लड़ाई में है, तो वही बातें वाकया होंगी। लेकिन अगर हमारा दिल शराफत की बातों में, यानी प्यार, मोहब्बत, फरमा बरदारी, ताबेदारी, एक दूसरे के साथ मसीह जैसा रवैया रखना, तो फिर हमारे उठने, बैठने, बोलने, चालने से मसीह जाहिर होगा। क्योंकि खुदा दिलों पर नजर करता है, ना कि जाहरी सूरत पर। आपको याद होगा उस बेवा औरत ने, उस गरीब औरत ने जब 2 दमड़ियां खुदा के हजूर उस खजाने में डाली, तो यसु मसीह ने उसके दिल पर, यानी कि उसके सोचने के तरीकाकार पर, उसके रवैये पर नजर की कि उसने किस रवैये से उस हदिये को दिया। इसलिए आप भी जब हदिया देते हैं, तो पूरे दिल, पूरी जान, पूरी खुशी के साथ खुदा के हजूर दें। ये ना देखें कि कोई बहन या भाई आपको देख रहा है, बल्कि खुदावंद यसु मसीह देख रहा है। क्योंकि वो हमारे दिलों पर, यानी कि हमारे दिमागों पर, हमारे सोचने पर नजर करता है। आए हम खुदा के हुजूर झुकें। खुदा बाप, हमारी ये दुआ है हमारे दिल की आंखों को रोशन कर। जैसे खुदावन खुदा उस बाल के पुजारियों के सामने तूने अपना मोजज़ा जाहर किया, वैसे ही खुदावन हमारी जिंदगी में अपना मोजज़ा जाहर कर, हमारी रूहानी आंखों को खोल। रूहुल कुद्दस के वसीला से, जैसे अलीशा नबी ने कहा कि खुदावंद तू उन सब की आंखें खोल दे ताकि वो जाने, इसी तरह खुदा बाप हमारी दुआ है हमारी रूहानी आंखों को खोल, ताकि हम जाने, समझें और उस सच्चाई को कबूल करें कि हम तुझ में क्या हैं और कौन सी कुदरत और बरकत और नेमतें हमें हासिल हैं, ताकि उनको इस्तेमाल करें। आ जाए हुए तमाम बहन भाइयों के लिए, बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए मेरी मिन्नत है, आज के कलाम के वसीला से बरकत दे और समझने की हिकमत और दनाई दे, और इनकी समझों को रोशन कर, इनकी समझों को वाजिया कर, इनकी समझों को दुबाला कर, बढ़ा, ताकि तेरी अकल के बायस मसीह में ज़िंदगी बसर करें। यीशु के नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन।